ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணயாம தேவாஹ பத்ரம் பஷ்யே பாக்ஷவீர்யஜத்ராஹ ஸ்திரைரங்கைஹி துஷ்டுபாகும் சஸ்தனோபிஹி வ்யஸேமதேவஹிதை யதாயுஹ ஸ்வஸ்தின இந்திரோ வ்ருத்தஸ்ரவாஹ ஸ்வஸ்தின பூஷா விஸ்வவேதாஹ ஸ்வஸ்தின ஸ்தார்க்ஷோ அரிஹநேமிஹி ஸ்வஸ்தினோ ப்ருஹஸ்பதிர் ததாது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. நமோ ப்ரஹ்மாதிப்யோ பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்ருப்யோ வம்சர்ஷிப்யோ மஹத்யோ நமோ குருப்யஹ சர்வோபப்ளவரஹித ப்ரஜ்ஞானகண ப்ரத்யகர்த்தோ ப்ரஹ்மைவாஹமஸ்மி ப்ரஹ்மைவாஹமஸ்மி. சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரா. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம். நமாமி பகவத் பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம். சூத்ர பாஷ்ய கிருதோ வந்தே பகவந்தோ புனஃ புனஃ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்தி வேத விபாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம. ஓம் நிதயே சர்வ வித்யானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் குரவே சர்வ லோகானாம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம. மேரே பீச்சே போல்னா சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்தேர் பவது மே சதா. ஓம் நம ப்ரணவார்த்தாய சுத்த ஞானைகமூர்த்தயே நிர்மலாய பிரசாந்தாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நம. ஓம் ஸ்ரீ சரஸ்வத்யை நம. ஓம் நமோ குருப்யஹ. பிரேம்புரிகா இஸ் ஜோ சத்ர ஹை உஸ்மே முண்டக உபனிஷத் அதர்வ வைத்திய முண்டக உபனிஷத் கா தீசரா முண்டக் தய கியா கயா ஹை. ஓர் முண்டக் மேனே பேலே யஹா பிரவச்சன் கியா ஹை இஸ்லியே தீசரா முண்டக் லேதே ஹை. சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜ் கே ஜமானே சே சுவாமி அக்கண்டானந்த் ஜி மகாராஜ் கே ஜமானே சே யஹா யே பரிபாட்டி ரஹி கி ப்ராத வேதாந்த் கா ஹி பிரவச்சன் ஹோ சிந்தன் ஹோ ஹம் உஸ்கா நிர்வாஹ் கர்த்தே ஹுயே ஹமேஷா வேதாந்த் கி சர்ச்சா கர்த்தே ஹை. வேதாந்த நாம உபனிஷத் பிரமாணம். வேதாந்த் கா அர்த்த ஹோதா ஹை ஜோ வேத கே அந்திம் பாக் மே ஹை. வேத சப்த கா அர்த்த ஹோதா ஹை ஜோ ஜ்ஞான் கி ராஷி ஹை பாடி ஆஃப் நாலேஜ். और वेद के अंतिम भागों में जो मंत्र है उसको पोजिशनल नेम, क्योंकि अंत में आते हैं इसलिए वेदांत कहा है, और उसी का एक दूसरा नाम भी है उपनिषद। आपने कई बार उसका अर्थ सुना होगा इसलिए मैं पुनरावर्तन नहीं करता हूं। उपनिषदलु धातु से इसका अर्थ होता है जो अत्यंत नजदीक हो। जैसे मेरा नाम है प्रत्येक बोधानंदा, प्रत्येक मानी सबसे करीब हो, नजीक हो, आत्मा, उसके विषय में निश्चित ज्ञानम, भ्रांति रहित ज्ञानम। किसके विषय में? मैं के विषय में, अहम के विषय में। मैं कौन हूं इस विषय में कोई संशय न हो, और जिस ज्ञान से, अहम के परमार्थ स्वरूप के ज्ञान से उपनी, उस ज्ञान से आत्मा की ही प्राप्ति होती है, पूर्णता की ही प्राप्ति होती है। षडल रू धातु गत्यर्थ है, यहां जानना ही प्राप्त करना है। जो वस्तु ज्ञान से मिलती है वो पहले से प्राप्त होती है, जो कर्म से मिलती है वो अप्राप्त होती है, उसको प्राप्त किया जाता है। तो नित्य प्राप्त पूर्ण आत्मा को पहचानना ही पूर्ण आत्मा की प्राप्ति है। इसलिए उपनिषद, महाराज इससे फल क्या होता है? इससे संसारी पना की निवृत्ति होती है, विशरणम, अवसादनम, अविद्या का नाश हो जाता है, और सबसे ज्यादा तकलीफ देना वाला है अपना ये शरीर। नैष्कर्म सिद्धिकार इसको कहते हैं दुख का उपादान कारण ये शरीर है। आपका और मेरा जो शरीर है, आपको जो जीवन में दुख आता है कहां से आता है? इस शरीर से आता है। रोग आता है, बुढ़ापा आता है, भूख लगती है, उसमें प्यास लगती है, बस डिमांडिंग बॉडी। तो जन्म मृत्यु जरा का नाश हो जाता है इस ज्ञान से, इसलिए उसको कहा है उपनिषद। उप उपसर्ग पूर्वक नी निश्चय न, षडल रू धातु के तीन अर्थ से उपनिषद शब्द बनता है, जिसका दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में पहचानना, ये जो विद्या है इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जो ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई थी इसलिए ब्रह्म विद्या है, और जो ब्रह्म का स्वरूप बताने वाली है इसलिए उसका नाम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्मणा उक्तम विद्या ब्रह्म विद्या, दोनों अर्थ हो जाता है। अब आप लोग जानते हैं वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद साम वेद, सभी उपनिषदों कोई न कोई वेद से आते हैं और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज ने 10 उपनिषद पे अपना भाष्य लिखा है। अपना भाष्य का अर्थ होता है परंपरा से प्राप्त जो विद्या थी उसी को उन्होंने अच्छी तरह से लिख दिया। ये उनकी बनाई हुई नहीं है, शंकर भाष्य विद्या जो है वो तो थी, उन्होंने लिख दिया। बड़ा उपकार किया हम लोग सब पर। सो ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐत्रिय तैत्रिय बृहदारण्य का छांदोग्य, ये जो 10 उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य ने टीका लिखी है, ऐत्रिय तैत्रिय सब। अब आप देखिए प्रेमपुरी में बहुत अच्छी बात यह है कि विद्वान संतों के द्वारा यहां प्रस्थान त्रयी पढ़ाई जाती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग प्रवचन सुने के न सुने पर स्वाध्याय में अवश्य बैठते हैं। क्यों? सबको स्वाध्याय अध्ययन करने की इच्छा है, इसलिए स्वाध्याय करते हैं प्रस्थान त्रयी का। ये 10 उपनिषद का भाष्य समग्र गीता का शंकर भाष्य और चतुर्सूत्री तक पढ़ ले अगर ब्रह्मसूत्र के, इस अध्ययन को कहते हैं प्रस्थान त्रयी। और बड़े आनंद की बात है प्रेमपुरी में प्रस्थान त्रयी चल रहे हैं और मैं आप लोग को कहूंगा आप लोग बड़े भाग्यवान है क्योंकि विद्वान संत जैसे दिव्यानंद जी महाराज विश्वात्मानंद जी महाराज मैं सबको जानता हूं, कैसे कैसे दिव्य भव्य विद्वान यहां आके आपको पढ़ा। उमेशानंद है अभी यहां है? हाँ, उमेशानंद जी महाराज भी बहुत अच्छे विद्वान है। इतने सरल महात्मा मिलना मुश्किल है, बहुत अच्छे हैं। ये सब यहां बिल्कुल पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी उसी परिपाटी का पालन करते करते, मैं कोई प्रवचन करने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। ओके, इसलिए 10 दिन या जितने दिन रहेंगे तब तक आप लोग मुंडक के 10 मंत्र का अध्ययन करेंगे 10 दिन में, एक एक मंत्र का हर रोज। अब आप देखिए थोड़ा मुंडक उपनिषद के विषय में कुछ कहना चाहिए। अथर्व वेदीय मुंडक उपनिषद प्रामाण्य भी है इसका, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इस मंत्र उपनिषद की व्याख्या की है। इसका नाम इसलिए रखा गया है मुंडक मानी सेवन हेड, जिन्होंने मुंडन करा दिया। कौन मुंडन कराता है? पूरा मुंडन कौन कराता है? शिखा को भी न रखे, सूत्र को भी न रखे, सबको छोड़ दे, वो कौन होता है? पूरा मुंडन वाला कौन होता है? सन्यासी होता है। गृहस्थ ब्रह्मचारी चोटी रखते हैं, आजकल तो मॉडर्न युवा ना ऐसे ही चोटी रखते हैं, वो दूसरी बात है, वो चोटी अलग है। हमारी परंपरा में जब मुंडन संस्कार भी होता है तब भी बाल रखते हैं थोड़े। ये थोड़े बाल का अर्थ है कि हम वेद का अध्ययन करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, इसलिए इतने आसक्ति रखते हैं तीन के प्रति, और सब आसक्ति को छोड़ देते हैं। एक एक बाल, एक एक कामना आसक्ति का प्रतीक है। मनुष्य की बाल में बड़ी आसक्ति होती है, मैंने देखा है। ये जिनके बाल चले जाते हैं ना, गंजे हो जाते हैं, कितना पैसा खर्च करके फिर से बाल की खेती करते हैं। बाल में काम का निवास है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग जाते हैं, वह क्या काम करते हैं? बाल कटवा देते हैं, आसक्ति का परित्याग करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बाल में पाप का निवास है। मानी वहां जाके हम उसको पाप की निवृत्ति करते हैं, बाल को छोड़ देते हैं, फिर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अब आप देखिए, जो सन्यासी हो, जिन्होंने मुंडन कराया है, वही जाके इस मुंडक उपनिषद का श्रवण करे। मैं दूसरा अर्थ भी दे देता हूं आपको, जो आगे जाके मुंडन कराने वाला है, आज नहीं तो कल जो सन्यास ग्रहण करने वाला है, ऐसा जिज्ञासु भी क्या करे, इसका श्रवण करे। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वो सन्यासी इसका श्रवण करे। जो चित्त शुद्धि का उपाय कर रहा है, अपने मन की सफाई कर रहा है, शुद्ध चित्त की प्राप्ति के लिए यत्नशील है, वो जिज्ञासु भी इसका श्रवण करे। मुंडक के श्रवण में जिज्ञासु और कर्म सन्यासी जिज्ञासु दोनों का अधिकार है, इसलिए इसका नाम है मुंडको उपनिषद। आपको बताएं, जब आप मुंडक सुनने जाते हैं तो इसके लिए शिरोव्रत बताया है। शिरोव्रत का अर्थ होता है अपने मस्तिष्क पर एक मटके में अग्नि रखकर, जलता हुआ अग्नि रखकर गुरु के पास जाना। यह है अग्नि विधि। क्यों? मेरा सिर में आग लगी है, ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा इतनी बढ़ गई है, ये गुरु इसको बुझा दो, इसलिए अग्नि व्रत इसमें है मुंडक के उपनिषद में। इसलिए ये मुंडक उपनिषद में एक बात देखने की मिलती है, इसमें शास्त्रार्थ नहीं है। आग अगर तैत्तरीय उपनिषद पढ़े, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़े, तो पूर्व पक्ष सिद्धांती ये दोनों का लंबा शास्त्रार्थ चलता है, बड़ी गंभीर चर्चा चलती है। ये उपनिषद में कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं है। और दूसरी विशेषता है, एक रूप से हरेक मंत्र अपने में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और कनेक्टेड भी है, जुड़ा हुआ भी है पूरे उपनिषद से, इसलिए ये मुंडक उपनिषद बहुत प्रसिद्ध है। इसके मंत्र को ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कई जगह उद्धरण मिलता है, कोटेशन मिलता है इसका, इसलिए इसकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समितपाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मंत्र जो बहुत प्रसिद्ध है ये भी कहां से आता है? इस उपनिषद से आता है। आइए उपनिषद में थोड़ा प्रवेश करें। आप लोग में से कई लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी तो थोड़ा इसके लिए इंट्रोडक्शन देते हैं उपनिषद का, कैसे ये उपनिषद शुरू होती है। पहले मंत्र कहता है कि ब्रह्मा जी ने जो विश्व के कर्ता धर्ता भर्ता है, या ब्रह्मा जी ईश्वर के रूप में वर्णित है, ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, जिन्होंने सृष्टि बनाई और उसका पालन किया। आप लोग को मालूम है ये पालन करने वाला विष्णु है और संहार करने वाला उपसंहार, संहार वाणी उपसंहार करने वाले रुद्र है। जब दो लक्षण बता दिया, विश्वस्य कर्ता जगत कर्ता, और कहा गोप्ता, गोप्ता का अर्थ कर दिया यहां कि उन्होंने उसकी पालयिता, उसका रक्षण भी किया। तो समझ लेना चाहिए उपसंहार भी कौन कर रहे हैं, यही परमेश्वर है। नाम भले ब्रह्मा लिखा है पर सचमुच ये परमेश्वर है। ये हमारी वैदिक परंपरा में ये तय किया गया है, कोई भी विद्या क्यों न हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स न क्यों न हो, गणित क्यों न हो, बायोलॉजी क्यों न हो, सभी विद्या का मूल स्रोत भगवान है। भगवान से ही सब विद्या आती है, इसलिए ये भगवान सब विद्या के मूल स्वरूप है। उन्होंने ही ब्रह्म विद्या, जो सर्व विद्या का अधिष्ठान है, सर्व विद्या प्रतिष्ठा, इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या को जान लो, ब्रह्म को जान लो तो ब्रह्म में ही सब विद्या का आश्रय है, इसमें ही रहती है। इसलिए यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसके एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। अब आप देखिए ये ब्रह्म विद्या भगवान से ही प्रकट हुई है, फिर उन्होंने अपने प्रथम पुत्र को शिष्य को ग्रहण कराया, ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उन्होंने उसको ठीक ठीक पढ़ाया। आगे कहते हैं ब्रह्मा ने अथर्व को दिया। अब आप देखिए ब्रह्म विद्या ऐसी है, इसमें एक नियम है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सब लोग पढ़े लिखे बैठे यहां। इस शास्त्र का एक नियम देखो, जो भी विद्या आपने ग्रहण की है उस विद्या को पढ़ने के बाद और किसी व्यक्ति को इसको पढ़ाना चाहिए। आपके पास इंजीनियरिंग का ज्ञान है, दवाइयों का, फार्मेसी का ज्ञान है, रोगों का ज्ञान है, आप वैद्य है, तो मरने के पहले कम से कम इतना करना पड़ेगा, आपने जो पढ़ाया है वो अन्य किसी को पढ़ा देना। स्वामी जी फुर्सत नहीं है हमको ऐसा करने की। आप संगीत बहुत अच्छा जानती है, शास्त्रीय संगीत, तो बनने के पहले क्या करना पड़ेगा? एक शिष्य को ढूंढ के जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसको पढ़ा देना। महाराज हम ये सब में नहीं मानते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो क्या फल होगा? शास्त्र कहता है मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। देखो प्रेत जैसी होनी मिलेगी उसको। क्यों? उसने ब्रह्म विद्या पढ़ी, उसने संगीत विद्या पढ़ी और किसी को उन्होंने उसको प्रदान नहीं किया। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि जो भी विद्या प्राप्त की है उसको किसी किसी को पढ़ा देना। आप गुरु के ऋण से उऋण हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने अथर्व को ब्रह्म विद्या दी। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाता पुरो वाचांगिरे ब्रह्म विद्या। उन्होंने अथर्वा को ब्रह्म विद्या दी। अथर्वा ने भी उस ब्रह्म विद्या को अंगी को पढ़ाया। नाम क्या बताया? अंगी, दीर्घ है अंगी। स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह। उन्होंने भी अपने पास नहीं रखी। हमारे स्वामी चिन्मय जी महाराज कहते थे दे वेर नॉट स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट। स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट नहीं थे, जो था उसको क्या किया? बांट दिया।